राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 जून 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
राम श्री राम 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 सीता राम
राम
यावर राम चंद्र की मोर मुकुट वंशी वा।
नींद क्या है और नींद और समाधि में क्या फर्क है? नींद क्या है तथा समाधि क्या है?
नींद में बेहोशी होती है, समाधि में होश रहता है, ये फर्क। संसार का दोनों अभाव, संसार का चिंतन न नींद में होता है न समाधि में होता है। और नींद में बेहोशी आ जाती है, अंतःकरण मोहित हो जाता है, उसमें जागृत रहता है। युवति ज्ञान दीपित, ज्ञान की दीप्ति जैसी ज्ञान, ये ज्ञान रहता है। और नींद में ज्ञान लुप्त हो जाता है, बोध नहीं रहता है, ये फर्क है। संसार के हवा बदलने बरोबर नींद में और समाधि में। और बोलो नींद नहीं आवे तो अपने जोरदार इच्छा होती है ना, नींद नहीं आती। सिनेमा देख नींद नहीं आती, रुपया गिनते नींद नहीं आती, रुपया गिनते नींद आ जाती है। सिनेमा देखते नींद आ जाती, नाटक देखते नींद आ जाती। जहाँ रुचि होती है विशेष वहां नींद नहीं आती। रुचि तो है नहीं, जबरदस्त कह रहे नींद आओ। काले टोले हरि भजन मोले माले मन से पोचा पो होते है कोनो साबे अन्ना। नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय हो। चौथा अध्याय पूरा हो गया, अब पांचवा अध्याय चलता है। इनमें कोई शंका हो तो पूछो। मैं बहुत संक्षेप कहता हूँ, बहुत थोड़ी 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 थोड़ी, जिससे ये जल्दी पूरी हो जाए। हाँ, ये बात वास्तव में है। जैसे गीता माया है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। ये श्लोक पहला। दूसरा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति सस्याह न प्रणश्यामि सस्यमे न प्रणश्यति। तो आत्मनि पश्यति उसका है सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि च आत्मनि ये। और वो है या मो यो माम पश्यति, अब मई है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंस मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि। पहले बोध जो मैं हूँ, इस हूँ का बोध होता है। हूँ के बोध के बाद मैं है हो जाता है, जो सब जगह परिणय हूँ। एक देश में दिखता है और वो सब देश में दिखता है। तो पहले हूँ में होकर फिर है में हो जाता है। दृश्य से आत्मा नहीं अथो मई जो मैं सभी में परिपूर्ण मया तत्म सर्व जग जबूर्जिना समय व्यावस दृश्य से आत्मा नहीं अथो मई जो बाद देखा। अहम के कारण से इसमें परिचिन्नता आती है। एक देशी बना आता है अहम को पकड़ने से। अगर अहम को न पकड़े तो अपने स्वरूप का बोध होता है। स्वरूप का बोध होते ही फिर सब जगह व्यापक नहीं स्थिति आत्मा नहीं अथो में ये आत्म रिश्ते आत्म से स्वभाव आत्म नहीं संतोष। ये आत्म हो जाता है। इसके बाद में परमात्मा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं प्रणश्यामि सर्वमेदं प्रणश्यति। स्वरूप में मान्यता होती है वो स्वरूप में होती है, एक मन बुद्धि में होती है, एक स्वरूप में हो जाती है। देखो स्वरूप की इतनी विलक्षणता है कि मानी हुई मान्यता ठेर हो जाती है। मैं हूँ आवाज आती है ना, मैं हूँ, मेरा विवाह हो गया, मैं विवाहित हूँ, तो मैं बदल गया। अब ये भूलेगा नहीं, ये नहीं विवाह हुआ तो मैं भूल गया, ये होगा ही नहीं। ध्यान देना बात बढ़िया मार्मिक है। बनावटी भी अहम की स्वीकृति स्थाई हो जाती है और असली स्थाई तो स्थाई है ही। ये बनावटी स्थाई है, मेरा ब्याह हो गया, मैं विवाहित तो हूँ, एक कन्या होती है मैं तो कन्या हूँ, फिर मैं तो विवाहित हूँ, तो विवाहित हूँ फिर भूलती नहीं हो, उनको याद रखना पड़ता ही नहीं। उम्र भर में याद नहीं कर मैं विवाहित हूँ, मेरा विवाह है, तो भूलेगी नहीं, क्योंकि थे तो अहम में बैठ गई। ऐसी मान्यता आप जब भगवान में बैठ जाए मैं भगवान का हूँ, फिर भूलती नहीं बात। जैसे मैं साधु हूँ, अब साधु हूँ तो नींद में जागृत में स्वप्न में कोई दिखेगा, विधवा होती है तो नींद में और विधवा ही देखती है, विधवा ही होता है, असल में विधवा ही होता है। ऐसे भीतर की मान्यता वो है मान्यता, यू मान लिया था कह दिया मैंने मान लिया, कुछ नहीं होता, ये मान्यता मान्यता नहीं है।
सत्संग सुनने से ये पता लगता है कि चेतन स्वरूप तो प्रकाश रूप है और अहम जो है वो तादात्म्य रूप होने से, तो फिर चेतन स्वरूप में मान्यता
होती है। देखो अगर चेतन स्वरूप में मान्यता न हो तो ईश्वर अर्ज जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो बंधन का दुख किसको होता है? बताओ, दुखी मैं हूं ऐसा होता है कि मन बुद्धि दुखी है, तो शरीर दुखी है, दुखी कौन होता है? स्वयं होता है, स्वयं दुखी सुखी होता है, वो ही स्वयं मुक्त होता है। मुक्ति अंतर्गण थोड़ी होती है, प्रक्रिया में चिदाभास को माना है। बंधन तो खुद को चिदाभास, मुक्ति चिदाभास को होता है अभाव, तो मुक्ति मुक्ति और अभाव एक हो या अभाव को चाहेगा? कोई मनुष्य अभाव नहीं चाहता अपना, अस्थिर अभाव से उसको दबाव हो जाता है। चैतन्य स्थानम लिंग देह या पुनः चित छाया लिंग देह सत्संगो जीव उच्चते, तो वो आभास मात्र का नाम जीव है, वो वास्तव में जीव मत ठीक नहीं है, ये चलेगा नहीं है गाड़ी। बंधन तो वास्तविक आभास का और मुक्ति विशाक्षी की, ऐसा क्यों बंद था ही नहीं, तो बंद था ही नहीं तो मुक्ति वास्ते कौन चाहता था, मुक्ति क्यों चाहता था? ये पुस्तकों की बात है, कोई सीखी सीखी बात का काम नहीं चलता भाई, समझे नहीं। बंधन का अनुभव अपने को होता है कि मन बुद्धि को होता है? अपने मुक्ति के सुख किसको होगा? खुद को होगा, जहाँ बंधन वही मुक्ति होगी। प्रक्रिया बनाने के लिए जो साक्षी है उसको तो पता है शुद्ध, और चिदाभास है उसको बंधन है, और वो ही संसार में जन्मता मरता चिदाभास, साक्षी है जो ही रहता है, तो साक्षी है जो ही रहता है तो दुख क्यों होता है कि चिदाभास होता है? मुक्ति बाद में सिद्धाभास मिट जाता है, तो मुक्ति हुई अभाव हुआ, इसे उत्तर दो, कोई जोर नहीं, आप में जो मर्जी है उत्तर दो। चौका बेजान पड़ रहा है वो सामने, साक्षी में बंधन था नहीं, सीधा पास रहता नहीं, तो मूर्ति किसी की होती है? वेदांति के पास उत्तर नहीं है इसका, है तो बताओ। सिक्योरिटी बात कहां तक चलेगी? नहीं रहेगी, टिकेगी नहीं, सीखी हुई बात टिकेगी नहीं। आप बताओ, शंका करो। देखो, एक आभासवाद होता है, एक अवच्छेदवाद होता है। जीव के विषय में कई मतभेद है। वेदांत अद्वैत सिद्धांत में भी दो मत है, एक अवच्छेदवाद मानता है, एक चिदाभास आभासवाद मानता है। आभासवाद अवच्छिन्नवाद, ये दो मत है, उसे वर्णन करें। गीता रह जाएगी, वर्णन तो कर दो मत। तो चिदाभास ये आभासवाद है, अवच्छेदवाद उसमें अवच्छेद है। देखो, खूब समझो, घड़ा है पानी से भरा हुआ, उसमें चंद्रमा दिखता है, सूरज दिखता है पानी में, वो सूरज चंद्रमा दिखता है, वो आभास है, स्वयं नहीं है चंद्रमा, वो स्वयं चंद्रमा नहीं है। जैसे चंद्रमा दिखता है ऐसे घर में आकाश भी दिखता है, आकाश दृष्टि का विषय नहीं है, दिखने आता ही नहीं, परंतु पानी गहरा दिखता है, वो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। तो एक तो आकाश का प्रतिबिंब पड़ा पानी में, और एक घटाकाश में घड़ा है, उसने देरी दूरी में आकाश है, पोलाथ है ना, घड़ा है जिसमें पानी भरा है, वो पोलाथ है। एक पोलाथ वाला आकाश है, एक पानी में प्रतिबिंब आकाश है। तो पानी का प्रतिबिंब आकाश है, ये आभासवाद है, और जो घड़े में आकाश है वो जीव ऐसा है, ये है अवच्छेदवाद। घड़े में अवच्छिन्न हुआ है, घड़े के कारण से सीमित हो गया है, आकाश सीमित होता नहीं, आकाश होता नहीं, नित्य सर्वगत स्थान सनातन, पर घड़े में अपने को मानता है, यह है अवच्छेद भाव। और वो आभास पड़ता है चैतन्यम यदिष्ठानम, और लिंग देहस्त यह पुनः, और चित छाया लिंग देहस्त तत्संगो जीव सामान्य चेतन, और चित्त और उसमें आभास, इन तीनों का नाम जीव है। ये है आभासवाद की प्रक्रिया। अवच्छेदवाद की प्रक्रिया है कि जो सामान्य आकाश है वो घटाकाश हो जाता है, तो उस घटाकाश कहते हैं, बड़े को महाकाश मठाकाश कहते हैं, और बड़े को महाकाश कहते हैं। महाकाश है ब्रह्म, मठाकाश है ईश्वर, और घटाकाश है जीव। ये है अवच्छेदवाद। वहाँ आभास है वो तो है जीव, और जो दूसरा साक्षी है वो शुद्ध चेतन है, और जो साक्षी पना भी नहीं है शेष चेतन ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ईश्वर और जीव, ये तीन भेद हुए। ये आभासवाद अवच्छेदवाद की थोड़ी बताई बात, शंका तो बोलो थोड़े में, समझे कि नहीं? तो मान्यता होती है वो खुद की होती है, मन बुद्धि की मान्यता ठीक है कि नहीं? आज मान लो भूल जाओ थोड़ी देर में, वो ठीक है कि नहीं? विवाह हो गया ये भूलता है क्या? तो भूलता क्यों नहीं है? मन बुद्धि की तो भूल जाती बात, मन बुद्धि की नहीं, स्वयं स्वीकृति होती है, स्वीकृति अस्वीकृति ये स्वयं की होती है, मन बुद्धि की नहीं। स्वीकार कर लिया आपने, हमारे गुरु है, आपने विवाह कर लिया, मेरी स्त्री है, ये स्वीकृति है। तो स्वीकृति भी नहीं भूलती है, चीज कैसे भूलेगी? स्वीकृति भूलती नहीं, ऐसे मान्यता भूल जाती है, मान्यता की स्वीकृति हो जाती है। अब उसके गोद चला गया, अब स्वीकृति कर रही, अब वही घर दिखेगा, वही माँ बाप दिखेंगे, वही धन दिखेगा, अपने जान जन्म वाला नहीं दिखेगा। उसकी अस्वीकृति कर दी, उसका बेटा नहीं हूँ, इसका बेटा हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, साधु हूँ, ये साधु की स्वीकृति है। स्वीकृति मान्यता, मान्यता छोटी होती मामूली, मैं मान्यता कह देता हूँ उसको, पर वो स्वीकृति है। फिर पूछो, देखो भाई मेरे को पूछना और समझना है तो जब तक आप ना समझो मेरा पिंड मत छोड़ो, चाहे गुस्से हो जाऊं, चाहे नाराज हो जाऊं, तो कैसे नाराज हो जाओ, मैं तो पूछूंगा, थोड़ा मत करो, नाराज होना मेरा विचार नहीं है। नाराज होने से भगवान तो एक भाई ने किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप मेरे से नाराज हो क्या, तेरे से नाराज होने से राम जी मिल जाए तो नाराज हो जाओ, मेरी क्या प्रयोजन होगा तेरे से नाराज होने पर, हमारी क्या फायदा होगा, भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाएंगे तुम्हारे से, मैं तुम्हारे नाराज होने भगवान से मिलते नहीं, फिर हम नाराज क्यों होंगे बताओ, हमारी क्या प्रयोजन है। मैंने तो सर साफ कह दिया है, तुम नाराज मानते हो तो नाराज मानो, मैं जब राजी था खूब उस समय मैं जैसे बताता था वैसे आज आप नाराज समझो तो कोई बात पूछो कमी नहीं, उसी रीति से बताऊंगा, तुम्हारा मत नहीं मिलता उस समय, क्या करें, एक मत नहीं मिलता, मत नहीं मत मिलो, मेरे विरोधी हो जाओ, बैर रखो, खूब अक्सा मेरे को दुख पहुंचाओ, परंतु ज्ञान की बात पूछो तो वैसे ही बताऊंगा जैसे मित्रता हूँ बताऊ, वैसे पर गए नहीं हमारे, इस वास्ते जब तक चीज समझ नहीं आए पीछे पड़ जाओ। नहीं बैठते छोड़ो, आप क्यों बैठे रहे, आप लोग मेरी बात बैठ जाती है क्या पूरी, तो भी मैं तो रोज ना कहता हूँ निशर्म होकर के, निर्लज होकर कहता हूँ, आप नहीं बैठे, नहीं बैठे थे तो एक आदमी नहीं बैठे क्या, मैंने इतने आदमी बैठे हैं, बहुत कम आदमी मेरी बात को पकड़ते हैं, तो नहीं पकड़ते तो मैं थोड़े से पिंड छोड़ दूंगा, मेरी तरह से कमी नहीं रखूंगा, शंका से पूछो, जिसकी शंका भी पूछो, विश्वास पर नहीं मानो तो नहीं मानो, तस्मात इतस्मात वह आकाश संभूत है, साचा है उपदेश अल्लाह नहीं करना, गीता चलाएंगे, रिकमेंड निकमें प्रश्न करो, कोई मतलब नहीं है उससे, तेरे क्या मतलब होगा बता दे, क्या नया हो जाएगा, नहीं बताना क्या हानि हो जाएगी, क्या भूख नहीं लगती, पानी नहीं भरता, रोटी नहीं आती, क्या पड़ता है, फालतू बातें कर, फालतू बातें समय बर्बाद नहीं करना। नारायण 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 नारायण, क्या कहते भाई, विस्तार से कहने समय कहाँ है ऐसा हमारे पास, विस्तार से कहूँ तो पूरे तमाशा होने जा रहा है, अगर विस्तार कहूँ तो पूरा तमाशा पूरा हो जाए, जैसे गीता पूरी हो न हो पता नहीं, संक्षेप से जल्दी नहीं होती। और पहले देखो आरंभ में कोई गीता सीखना चाहे तो मूल मूल ठीक अर्थ समझना चाहिए, फिर से विस्तार समझ में आएगा, पहला विस्तार करो तो रुक जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, समझ नहीं पाओगे, ये संक्षेप से पकड़ लोगे फिर विस्तार समझ लोगे, तो साधु समझने में नहीं पड़ लो, समझ में जाएगा, मूल मूल ठीक हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। राम 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 ృష్ణాయ గీతామృతం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం వంశీ విభూషితరాజ్ఞీరీతాంబరాజరుగవింద్రాష్ణాపరీమే హరి పరమాత్మేమస్తి నారాయణ 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 నారాయణ. పేరే పిఖ్యా వ్యాఖ్యాన్ దూబ్ విస్తార మా భోజన లేదు బడనే కబర స్వామి గీతా కే ఇక గీతా పరే దీ గీతా కమి శేర దాదా తిరస్కార గీతా కా వర్షో తో గీతా నీ కీ అబ్ కి భగవత్ కృపా శురు హోగా మౌకా మిల్తా నీ నా సుని వాళ్ళ సుతే నా మే కే కేతా గీతా జాడనా చాలా బహుత్ సుందర అవసర థియేటర్ సుని సునా ఛోడే సంజయరామజీ ఛోడనే ఢంగి బేగా ఠీక శంకా నీ బే సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం సంససి యస్సే ఏతియోరేకం తన్మే బ్రువేషు నిశ్చితం. కర్మో కా సన్యాస్ భీ కహతే హై, కర్మే కే యోగ భీ ఆప్ కహతే హై. ఇన్ దోనో మే జో నిశ్చిత కళ్యాణకారక బాత్ హో వో మేరే సే కహియే. యే అర్జున కా ప్రశ్న హై, నిశ్చిత కళ్యాణ. कई लोग कहते हैं कि कल्याण की बात इसमें नहीं आई तो कर्म की बात ही है, तो बात याद आ गई इस बात से कहता हूं. लोग ऐसा कहते हैं, गलती है वो. दूसरे अध्याय में यश श्रेयस्याम निश्चितम भूहितन में श्रेय पूछा, यश श्रेयस्याम निश्चितम भूहितन में. तीसरे अध्याय में यश से वहां बता है जय श्री चेत कर्म नस्ते मता पुत्र जना तत्किन कर्म घेर मांग लियो व्यामी श्रेणी वाक्य न बुद्धि मोह यसी में तदेक निश्चित ये न श्रेय हम अपने वहां भी निश्चित और श्रेय पूछा है. या भी यह श्रेय सात ये जो उत्तर में पुरुष को निश्चित हम निश्चित श्रेय बता दिए. इस बात की गीता में श्रेय का ही वर्णन है, कर्मों का वर्णन साथ में आया है. प्रेम प्रेम श्रेय का ही वर्णन है. अर्जुन बार बार श्रेय पूछता है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पांचवे अध्याय में श्रेय पूछता है. वो श्रेय कहिए मेरे को, यह श्रेय से आप निश्चित तन्वे श्रेय और एकम तन्वे गुरु निश्चितम निश्चितम श्रेय सा तन्वे गुरु ही बात. तो कर्म का संन्यास कहाँ कहते हैं? पहले चौथे अध्याय में योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचित अभी 41 में आया है. पहले तस्मा का ज्ञान बहुत है. तो योग के रूपी संन्यास करना, तो संन्यास के आप कहते हैं. और पुनः योगन से अंत में कहते हैं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ बात है, योग का अनुष्ठान करा लिया तो योग का अनुष्ठान कहते हैं. तो कर्मों का संन्यास भी कहते हैं और कर्मा योग भी कहते हैं. तो इन दोनों में महाराज कल्याणकारक बात कौन है मेरे से कहिए. तो मेरे से कहिए का मतलब मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं, सांख्य योग का अनुष्ठान करूं, कर्मों का त्याग करूं, क्या करूं? तो भगवान कहे संन्यास कर्मयोग संन्यास करो. संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण करने वाले हैं. 39 श्लोक में दूसरा अध्याय ए साथी बीता सांख्य बुद्धि योग हेतु ईमान सुनू. सांख्य में कई योग भी सुन ये विभाग कर दिया भगवान ने. और ये विभाग तीसरे अध्याय में कह दिया भगवान ने कि लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता में ज्ञानी एकम संख्या नाम कर्मयोग योगी नाम तो फिर अर्जुन क्यों पूछते हैं? फिर पूछते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, कर्म योग में चलूं, ज्ञान योग में चलूं, तन में गुरु शिष्य कर जाना हो। तो भगवान कहते हैं संन्यास कर्म योग दोनों निस्तेज करो, उभौ दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। दोनों में तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेषते, कर्म संन्यास योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, ये विशेष है, समझे? संन्यास कर्म उसके परीक्षा क्यों ये असानित्य संन्यास ही यो ना द्वेष। कर्म योग में क्या है? राग द्वेष उपदेश हो जाते हो, राग द्वेष नहीं करना, ना किसी से राग करना ना द्वेष करना है, ये कर्मयोग का मतलब है। तो गे ऐसा नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी जानने लायक है जो निर्द्वेष न दोष न कांक्षति, निर्द्वेष न कांक्षति, निर्द्वंद वही बाहबाह सुगम बंद, राग द्वेष ये द्वंद है, ठीक रूपये ठीक ये द्वंद है, राजी और नाराजी ये द्वंद है, इन द्वंद से एक उधर तत्काल मुक्त हो जाता है, तत्काल एक द्वंद को छोड़ दो भाई। बंदे विमुक्ता सुख दुख संगे निर्योग निर्द्वंद नित्य सतोष निर्योग क्षमा दूसरे में आया है, और निर्द्वंदो द्वंदे विमुक्ता सुख पंद्रह में आया है, द्वंदो से रहित हो जाए, ये द्वंद दो दो शोक दुख राग देश हर कर शोक राजी नाराजी ये ही खास संबंधन है, इस रेत हो जाए, हो गया सो गया, आ गया आ गया, चला गया चला गया, बरसा बरस गई चली चलेगी, अब क्या मतलब उसे? अनुकूलता आ गई आ गई, चलेगी चलेगी, प्रतिकूलता आ गई आ गई, न अनुकूलता ठहरने वाली न प्रतिकूलता ठहरने वाली। अनुकूलता के आने में सुख होता है, जाने में दुख होता है, प्रतिकूलता आने में दुख होता है, जाने में सुख होता है, फर्क क्या है? आई ख्याल में आई नहीं बात, मन चाहिए चीज हो जाए तो सुख होता है, और वो मिट जाए तो दुख होता है, और बेचाही चीज मिट जाती है तो सुख होता है, आ जाए तो दुख होता है, एक तरफ दुख उसने एक तरफ उसने, फर्क क्या है? कोरा माना हुआ फर्क है, माना हुआ ही बंधन है, अगर ये फर्क ना माने बंध रहे तो हो जाए, किसी तरह से हो जाओ मुक्त हो जाएगी, खुला दरबार है, कोई आ जाओ। निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधा, सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। अब संन्यास और कर्म दोनों कल्याण करने वाले हैं, ये बात कही। अब उसका वर्णन करते दो श्लोकों में, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवजंती ने अपने, सांख्य और कर्म योग इनको अलग अलग बालक कहते हैं, मूर्ख बेसमझ कहते हैं, सांख्य योग अलग है कर्म योग अलग है, दोनों को अलग अलग कहने वाले मूर्ख है, बाल ना मूर्ख का है, एक में प्यास रह समय एक में ठीक रह सकता है, कर्म योग में चाहे सांख्य योग में, एक में सम्यक स्थित हो जाए तो उभयोर विन्दते फलम, दोनों का फल मिल जाता है। तो एक में प्यास कहते हैं दोनों कल्याण करने वाले, क्या मतलब हुआ? कि यह सांख्य प्राप्त स्थानम, सांख योगियों के द्वारा जो चीज प्राप्त की जाए, योगी जब वही योगियों के द्वारा कर्म योग के द्वारा वही चीज प्राप्त होती है, जो सांख योग प्राप्त होती है, इस वास्ते एक सांख्य योग, इस वास्ते एक साधन में दो है, अगर एक हो जाते दोनों ही एक तत्व को प्राप्त हो जाते, इस वास्ते अलग अलग नहीं है, और ऐसे दो निष्ठा अलग है, दुविधा निष्ठा पुरापुरोत्तम ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम अलग अलग है, पर दोनों का नतीजा एक होता है, एक तत्व की प्राप्ति एक समान होगी, कर्म योग से भी और सांख्य योग से भी, सांख्य योग ज्ञान योग वो एक ही है, कर्म योग ये है, बुद्धि योग बुद्धि योग ये नाम आया है, बुद्धि योग आया है, कर्म योग आया है, ऐसे सांख्य योग आया है, ज्ञान योग आया है, ज्ञान हो दोनों का एक फल है परमात्मा की प्राप्ति, यह सांख्य प्राप्ति के स्थान तद योगी गम्य थे, एक सांख्यंज योग यह पश्यति स पश्यति, दोनों का फल एक देखता कोई ठीक देखता है, पर एक विलक्षणता है, कर्मयोग विशेष है। संन्यास वस्तु महा हो दुख महा महाबाहो संन्यास बिना योग की प्राप्ति नहीं कर। पहले कर्मयोग करे तो सांख्य योग की प्राप्ति होगी। सांख्य योग है वो कर्मयोग के अधीन है। कर्मयोग के बिना बातें बेसिक बताओ बनाओ भाई खूब कह दो याद कर दो फायदा नहीं होगा। संन्यास वस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोग बिना योग के संन्यास बड़ा कठिनता से प्राप्त होता है। योग युग तो मुनिर ब्रह्म योग युग तो होता है नतीर ब्रह्म न तत्काल ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योग की जरूरत नहीं उसमें। सांख्य योग के लिए तो कर्म योग की जरूरत है। कर्म योग के लिए सांख्य योग की जरूरत नहीं है। ये त्रयोस्त क्रम संन्यास कर्म योग विशेष व्याख्या होगी। योग युग तो विशुद्ध आत्मा विदित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मभूत पूर्व नपिन लिप्यते। योग युग तो और विशुद्ध आत्मा विदित आत्मा अंतकरण शुद्ध है और स्वयं शुद्ध है जितेंद्रिय इंद्रिया अंतकरण वश में है और स्वयं उसे परायण परमात्मा के ऐसा सर्वभूत आत्मा सर्वभूतों की आत्मा भूत ही आत्मा सब में अपने को देखता है। किसी को दुख हो तो आत्मोपमेन सर्वतः समम पश्यति योगिनः सुखम वा दुःखम संयोगी परमो मतः। वो कुर्वन भी नहीं करता हुआ तो लिप्त नहीं होता। समता है ना समत्व योग राग द्वेष नहीं हर रोग नहीं अनुकूल प्रतिकूलता कोई आदर करे कोई निरादर करे कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे। करने वाले कहते रहे हम क्यों सुखी दुखी हो गए निंदा करने वाला वो करता है हम सुखी दुखी हो जाए प्रशंसा करने वाला दूसरा ही करता है हम सुखी वो तुम्हें क्यों सुखी हो गए। करने वाले स्वभाव करो भाई छुट्टी दे दो संसार को चाहे भला को और बुरा को और सबको छुट्टी है हमारे लिए कर दो भाई खुशी आ तुम मौत हो जाएगी। अरे यूं क्यों कह दिया मेरे को यूं क्यों कह दिया रोते रहो वो तो कहने वाले बंद हो गए नहीं वो तुम्हारी सम्मति लेंगे नहीं वो तो मर्जी अपने से कहेंगे तो अपने छुट्टी दे दो ना। हाँ कहो भाई मैं कर दो निंदा करो निंदा कर दो आदर करो आदर कर दो निराद करो निरादर कर दो अपनी क्या वो करता है जो कर दो अपने अपने हंसते की चालो चलो मन मेरा जगत को करी को भूस बादे तो राम सिमर जग हस बाद। तो ये कर्मयोग की बात बताई। अब दो लोगों से सांख्य योग की बात बताते हैं। संन्यास कर्म दो पूछा संन्यास कर्मयोग एक बार कर्मयोग सांख्य योग कर्मयोग सांख्य योग इस तरह से वर्णन आएगा पंचम अध्याय ऐसे। तो ये कुरुवन्न में लिप्त करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। सांख्य योग करता हुआ करता बनता ही नहीं तो लिप्त नहीं होता है करता बनता है तो लिप्त हो जाता है। और योग कर्म योगी है वो कुरुवन्न भी नहीं करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नहीं वो किंचित करो भी युग को बने तत्वित है तत्वित वो सांख्य योगी तत्वित होता है तत्व को जानता है पहले से ही तत्व पर दृष्टि रहती है उसकी। वो नहीं किंचित करो मैं कुछ करता नहीं हूँ अपने आप में कर्तृत्व नहीं देखता है कर्तृत्व नहीं है तो कर्म कहाँ है फिर करण कहाँ है कर संपदान अपदान फिर कहाँ है। नहीं वो किंचित करो किंचित मात्र भी नहीं करता हूँ कैसे नहीं करता है। बात तो बढ़िया है भाई आप ध्यान दो तो अच्छी बात न दो तो भी स्वतंत्र हो आप क्या करें हमारी तो प्रार्थना है ध्यान दो। बहुत ऊंची बात बड़ी सरल सीधी बात आप अपने को मानते हो न मैं हूं मानते हो ना आपका जो होना पड़े ये सत्ता आपका स्वरूप है शरीर इंद्रिय अंतर्गत आपका स्वरूप नहीं है अहम भी आपका स्वरूप नहीं है आम है प्रकृति आप हो पुरुष परमात्मा का अंश अहम है प्रकृति का अंश तो अहम का भी प्रकाशक आप नित्य सत्ता रूप से तनूप चित घन सब घन आनंद घन है आप। अगर इसमें स्थित रहो तो अहंकार तक आवेगी अनुकूलता प्रतिकूलता आगे आप तक पहुंचेगी नहीं मस्त हो जाओ सदा के लिए नहीं वो किंचित करो मैं योग तो मन ने तत्व पश्चर शरण सत्संग इंद्रिया इंद्रिया से बोलते तेरा क्रिया बताए तेरा पश्यन स्वर्णन स्पर्शन जिग्र अर्सन गत्सन स्वपन स्वसन प्रपन विसर्जन ग्रहण उन्मेषन निमिषन अभी इंद्रियाणी इंद्रिया से सुवर्तन्ते आप सत्ता रूप से प्रकाश स्वरूप साक्षी से स्वतः स्थित है आप स्वतः ये कुरु जो भी करते हो करता है इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन से इंद्रिया करता है मैं करता नहीं हूँ इंद्रियाणी इंद्रियार्थ सुवर्तन से इंद्रिया इंद्रिया वर्त सही है तो करता इंद्रिया है कहीं इंद्रिया को करता बता दिया प्रकृति प्रकृति को करता बता दिया कहीं गुणा गुणे सुवर्तन से गुणों को करता बता दिया अपने कर्ता नहीं है अपने कर्ता मानते उसी निंदा की गई सत्यव सत्कर्ता आत्मान केवल पश्चित अकृत बुद्धि तो अकृत बुद्धि न समझ दुर्मति उसे खोटी बुद्धि समझता नहीं मूर्ख लंसराज है जो अपने कर्ता मानता है अपना कर्ता नहीं है समझे इंद्रिया इंद्रिया सुबह ब्रह्मण आधार ये कुल में पहले पेश हो गया समझे उसने धार्य अब कर्मयोग होते हैं ना उनके दो प्रकार है एक कर्म करता है भगवान के लिए एक करता है संसार के लिए संसार में सुख पहुंचे हमारे कुछ मतलब नहीं समाधि तक संसार श्रवण मनन निर्जासन ध्यान और समाधि भी संसार के लिए ये कर्म योग इसका स्वरूप है और कई करते हैं भगवान के लिए तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दे संगम तत्व करोती है आशिक तरह त्याग करके कर्म भगवान में अर्पण कर दे भगवान के लिए किया जा रहा जो कुछ लिपते न सफाते न पद्म पत्र नाम बसा जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है जल में ही रहता है मन पत्ते के ऊपर जल आ जाए तो मोती की तरह रोटी की तरह होता है भेदन नहीं होता जैसे कपड़ा सोच ले ऐसे भेदन नहीं होता पत्ते में तो पद्म पत्र की तरह निर्लेप रहता है इंद्रिया इंद्रिया बस रही है बोल से जैसे वो ऐसे ये भी संग आशंका त्याग कर्म योगी भी पद्म पत्र की तरह कर्म योगी कर्म रहता है कर्म योगी होता है वो कर्मों में रहता है कर्म करता है सब रहता है पर लिप्त नहीं होता किसी में जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है जल में ही रहता है मन से लिप्त नहीं होता ये बात है। दूसरी बताते हैं कार्य ना मन सा बुद्धिया केवल ध्यान देना कर्मयोग की बढ़िया बात बताते हैं काया मन और बुद्धि और केवल इंद्रिया इनसे योगी ना कर्म योगी कर्म योगी कर्म करते हैं संगम तत्व शुद्ध आशिकता त्याग करते कर्मयोग का जो करते हैं करते हैं केवल अंतकरण शुद्धि के लिए तो अंतकरण जिस जाति का है उस जाति की इंद्रिया है कार्य न मन सा बुद्धिया केवल इंद्रिय भी एक ही धातु है तो इसकी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं केवल कहने का तात्पर्य क्या है कि ना मेरा शरीर है ना मेरा मन है ना बुद्धि है ना मेरी इंद्रिया है केवल ममता रही बिल्कुल ऐसे योगी कर्म करते हैं अपना है ही इंद्रिया मन बुद्धि जो संसार के मन बुद्धि इंद्रिया शरीर है ऐसे यही उसी उसी है ऐसे करता है तो बस मुक्त हो जाता है युक्त कर्म फलन चलते ऐसा योगी कर्म योगी फल का त्याग करके और शांति में अपने निष्ठा होने वाले निरंतर रहने वाले शांति को प्राप्त हो जाता है शांति में अयुक्त काम अयुक्त योगी नहीं है काम कार्य नहीं ये मिल जाए ये खा लू ये मिल जाए ये लू ले लो फल तो निबद्धते ऐसा काम ये फल मिलेगा ऐसा करो तो ये फल मिलेगा हम जामे सत्संग से तो फल मिल जाएगा उसमें ये फल मिल जाएगा ये मिल जाएगा कुत्ता टुकड़े के लिए घूमता फिरता है ऐसी फल से तो नहीं देते फल में आशो तो बन जाता है। कि फल है उत्पन्न होने वाला, उस ऊपर भी जाता जन्म और मरो, जन्म और मरो, बहुत सबर। युक्त कर्म फल त्याग शांति भाव अपनी होती नई स्थिति को मजबूत काम कर ना फल संतो निबद। जैसे ये कर्म योगी की बात बसे, अब फिर संख योगी बता से सर्व कर्माणी मनुष्यास्ते सुख मनुष्यास्त सर्व कर्माणी मनुष्य संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग करे। कर्म मैं नहीं करता हूँ, जैसे बता देव किस गुरु किसी तो मन से है सर्व कर्माणी संयसी आस्ते सुखी तो वशी मानो इंद्रियों से वश में है, इंद्रियों वश में नहीं वो कर्म यो नहीं कर सकता, वो फंस जाएगा। बस ये इंद्रिया वश में है वो सब कर्मों को मन से त्याग करके नवद्वारे पूरे देही, नवद्वारे पूरे देही में त्यागे। कहाँ त्यागे? नवद्वारा वाली ये दो नीचे दरजार पांच भी चार ऊपर के है, दो आंख है, दो नाक, दो कान, एक मुख। ये नवद्वारा वाला देह में सात ही हो गए, दो हो गया मलमूत्र से छोड़ने के, नौ द्वारे शरीर में सब कर्मों को छोड़ते है, अपने कोई सूल नहीं है। नौ द्वारा वाली इसी जाति का कर्म इसी जाति के नौ द्वारे पूरे दे नौ कुरियर न करे, न करता है न करवाता है होता है अपने जिस समष्टि शक्ति से संसार की क्रियाएं होती है उसी शक्ति से ही व्यक्ति की क्रियाएं होती है। समष्टि शक्ति से जैसे समष्टि शक्ति से जो पिता सब बनवास जंगल वृक्षों को, ऐसे समष्टि शक्ति से जो काम हो रहा है खाना पीना सुनना देखना सुनना मतलब समष्टि शक्ति से अपने को जहाँ फंसाते कि मैं करता हूँ तो फंस जाता है। ऐसे समष्टि शक्ति होता रहे अपने निरंतर मौज करे, नहीं वो गुरु न कार्य न करता है न करवाता है, न प्रयोज्य करता है न प्रयोग करता है, तो प्रयोज्य करता भी नहीं है और वास्तव प्रयोग प्रेरक करता भी नहीं है। तो कुछ नहीं बनी करती तो किसने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया है, करते तो खुद ने बनाया, इस बार खुद को छोड़ना पड़ेगा। न करते तो न कर्मा नहीं लोक से श्रुति प्रभु प्रभु लोकस्य कर्माण्य श्रुति, परमात्मा लोगों के कर्मों की रचना नहीं करते, तुम ये कर्म करना हो न कर्म फल से ही होगा, न कर्म के फल का ही मिलेगा, वो भी भगवान ने रचना करती। तो स्वभाव स्वाभाविक पशु पक्षी की तरह ये मनुष्य प्रवृत्त हो रहा है, तो मनुष्य बना सकते नहीं है, अपने स्वभाव के परवश में हो पशु का है स्वभाव के वश में होगा। इस बात से स्वभाव ना देते कश्य पापों, जब वो करवाता नहीं तो प्रभु विभु परमात्मा ना देते कश्य पापों, किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते न पुण्य को ग्रहण करते है, ज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इस वक्त मोहित से मैं करता हूँ, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, अब करो और भोगो, करो और भोगो, संसार है। तत्वित तो थी तत्वित तो नहीं करता, तत्वित तो महाभाव गुण कर्म में भाग गुणा गुण से वर्तन थे इसी मत न सद्य थे तत्वित ये है। तो ज्ञान है तो ज्ञान ये सब नाश्ते महात्मा, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने अज्ञान को दूर कर दिया तो आदित्य ज्ञान प्रकाश जैसे सूर्य जाता है प्रकाश कर देता है, ऐसे सब प्रकाशित हो जाता है एकदम ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। वो अज्ञान है आवृत ज्ञान तेन मुह्यंती, वो मोह नहीं होता ज्ञान से, अज्ञान से आवृत है, ज्ञान से अज्ञान का नाश कर दिया, बस स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध रह गया। ज्ञान है अज्ञान को नाश कर स्वयं शांत हो जाता है अज्ञान का नाश करके। त्रिसमाधि जीवन प्रकाश कुछ करे तद बुद्ध है सदार्थात्म संदेष्टा सब पराना गच्छन च पुनरावृत्ति ज्ञान निरुद्ध कलमशा तद बुद्ध है सदात्मान संदेष्टा सदात्मान उस परमात्मा में मन लगा दिया तद बुद्ध है उसमें बुद्धि लगा दी तद निष्ठा उसमें सिद्ध हो गई और उसी की परायण हो गई परमात्मा सत्य हो गई ऐसे गच्छन अपना ज्ञान निर्धूत कर्म से ज्ञान से जिसका कर्म पाप धुप गया है अपनरावृत्ति गच्छन थी फिर पुनरावृत्ति नहीं लौट आते ही नहीं कहाँ जाता है ये नहीं पुनरावृत्ति नहीं होती न से पुनरावर्तती न से पुनरावर्तती फिर आदमी नहीं आता जन्म नहीं होता उसका कैसी स्थिति होती है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवीर हस्तनी सुनिचे और स्वपा के पांचों में पंडिता समदर्शी न हो एक परमात्मा से एक विद्या विनय ब्राह्मण में गऊ में संडाल में कुत्ते में सब जगह एक परमात्मा प्रभुर ऐसा उस परमात्मा से पंडिता समदर्शी न आज लोग इसका अर्थ करते हैं कि छुआछूत मिटाओ सबके साथ खाओ क्यों पंडित समदर्शी में समझे अरे समवर्ती न है ये तो समता कुत्ते में ही है वो ब्राह्मण की रसोई में पैर धो जाएगा कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाएगा तो पैर धोकर जाएगा क्या उसे समता है चाहे मैं तो रसोई में जाऊ ब्राह्मण की रसोई में समता है ये तो कुत्ता में ये समता समता है हर एक खा दिया हर एक ब्याह कर दिया हर एक ने कर दिया ये दशा है इस लोग को लेते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण विद्या और विनय दोनों हो विद्वान केवल नहीं है केवल विनय नहीं दोनों है ऐसा ब्राह्मण उत्तम से उत्तम ब्राह्मण और गौर हाथी कुत्ता और स्वभाव शानदार समदर्शन सम्मान एक परमात्मा सब में परिपूर्ण है खान पान एक करेगा कैसे करेगा ब्राह्मण है और गऊ है गऊ को दूबेगा तो ब्राह्मण को दूबेगा हाथी नहीं हाथी को दूबेगा हाथी पर चढ़ेगा कुत्ते पर चढ़ेगा सुनते हो सपा जैसा कुत्ते काम करेगा मैं तेरे को तो ये बात समदर्शित है परमात्मा समान है गणा हाथ में पैरना होना चाहिए पैर में पैरना चाहिए सिर में लगाना होना चाहिए नाक में चाहे कान में सोना है एक सोने को देखना ये समदर्शी है गणा कहीं है पैर हाथ में पहने हाथ का कान में पहने खास नाक में पहन दिया ये समवर्ती न होता तो जैसा पंडिता समवर्ती न तो संभरता होकर सबके साथ ब्राह्मण सती में खान पान एक होगा सबका ज्ञान नहीं होगा ये सब नर्सी नहीं है समझो निर्दोष अंगी समम ब्रह्म सब लेके निर्दोष ब्रह्म है उस ब्रह्म को देखता है पंडित को देखता जैसे गाड़ों में गणों में सोने को देखता है जैसे अशुभों में लोहे को देखता है जैसे मिट्टी के बचने हुए बर्तनों में छोटा हो बड़ा हो वो मिट्टी को देखता है ऐसे सब में परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे पंडित संदर्शन ऐसी होगी नहीं स्थिति यही चरित स्तर को ये सब साम्य स्थित मना जिनका साम्य अवस्था वो मन स्थित हो गया सामने एक परमात्मा तत्व है ऐसे निश्चल हो गया यही चरित स्तर का यहाँ जीवित अवस्था में संसार मात्र को जीत गए संसार उसको नहीं जीत सकता संसार में ऊंचे उठ गए क्योंकि परमात्मा तत्व को देखता है संसार क्या करे बेचारा संसार अभी नहीं होता पैसा बढ़िया चीज है नहीं भोग बढ़िया चीज है तो संसार जीत गए आप हार गए उस परमात्मा के गुरु मस्जिद है तो यही तिरता स्वर्ग हो ये सब साम्य स्थित मन जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यही मन जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया क्योंकि निर्दोष है समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है जिसका मन निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्मणि से स्थित मन में समता है और पवित्रता है मौज हो रही है न हर्ष है न शोक है न राग है न द्वेष है ऐसा होने पर एक प्रसन्नता होती है राग द्वेष राग द्वेष दियुक्ते शरद आत्म विषय मिला प्रसाद होती प्रसाद प्रसाद सर्व दुख आराम प्रसन्नता होती है विलक्षण राग द्वेष रहित राग द्वेष सहित पदार्थ का सेवन करने में प्रसन्नता होती है धन मिल जाते राजी हो जाते भोग मिल जाते राजी हो जाते राजी महान पसंद करने वाले राग द्वेष रहित हो जा रहे पर जो प्रसन्नता आती है संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं प्रसाद सर्व का नाम आने तो ऐसे है। अब ध्यान में थोड़ी बात बता थोड़ी सी बात बता दी शेर जी ने कहा था बड़नी से सत्संग हो रहा था उसमें कहा कभी हमारे इधर पहाड़ है तो सूर्योदय उतना दिखता नहीं पहाड़ हरा बहुत ऊंचा है तब दिखेगा और हम कहते हैं कि सूर्य तो हो गया क्या पता कि देखो सामने पहाड़ की चोटी पर आतप आ गया घाम आ गया वो घाम पहाड़ पर आ गया तो सूर्य तो हो गया शायद सूर्योदय हमें नहीं दिखे ऐसे ही जिसके मन पर समता आ गई ये शाम साम्य स्थित मन तस्मात ब्रह्म था इस वजह ब्रह्म से थे ब्रह्म से दो तो मन में समता नहीं आती जबरदस्त चिंता कितनी ही ठहरेगा ब्रह्म स्नान होने पर यही तरी को संसार में भी गया ये संसार में स्थित माना निर्दोष ब्रह्म तस्मात ब्रह्म से था तो क्या करेगा न प्रतिषेध प्रेम प्राप्त प्राप्त चाहिए प्रिय को पाप पा करके हर्षित न हो गए अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो गए प्रिय अप्रिय तो ज्ञान कर ज्ञान होगा प्रिय अप्रिय का ज्ञान शरीर के अनुकूल है प्रतिकूल है मन के अनुकूल है प्रतिकूल है इंद्रियों के अनुकूल है प्रतिकूल है स्वास्थ्य के अनुकूल है प्रतिकूल है धर्म के अनुकूल है प्रतिकूल है ये तो ज्ञान तो होगा मन अनुकूल के बारे में हर्ष नहीं प्रतिकूल ज्ञान होगा ज्ञान बात नहीं होता है बोध ग्राहक द्वेष होता है तब प्रतिशेष में प्रेम प्राप्त को हर्ष होता है फंस गए प्राप्त अपने पर उद्वेग होगा हलचल होगी तो फंस गए भाई दोनों बरोबर है क्या है प्रिय है ठीक है ठीक है ये आदर करता है निरादर करता है प्रशंसा करता है निंदा करता है करने वाली मर्जी भाई करे स्वतंत्र है हम सुख दुख क्यों निंदा वो करे दुख हो गया हम करता वो है हम दुख हुआ वो प्रशंसा करते हम राजी हो जाए महाराज बड़े सहसा बड़े ज्ञानी राजी हो गए वो बेचारा अपने स्वभाव से कह रहा है वो जाने जैसे अपनी भावना कह रहे हमारी धारणा तो कैसा नहीं हमारी कोई पहचानता ही नहीं कोई पहचानता है अपनी धारणा कहता है एक कहता बड़ा ठग है बड़ी ठगाई करता है मेरे कोटी है खर्च नहीं करता खाता है पीसा मौज करता है कपड़े मकान किराया पुस्तक सब लेता है कोटी है खर्च करता नहीं किसी को ऐसी बातें बनाना ही आती है ये बड़े चालाक करने से ऐसे होते हैं साधु सुनिए खुद तो खर्चा करते नहीं और कमाने वालों को और खोटी कर देते हैं आ जाओ बैठो जो हमारे को रुखा हो बैठो सब बैठ जाओ रज अरुआ खेत का खावे ने खावा दिए खेत में अरुआ होता है पूछना उतना तो खाता ना इन खाने देता ऐसा लोग कहते तो कह रहे क्या जो वैसा हमारे क्या घट गया भगवान वोट नहीं लेते वोट लेते तो भगवान भाई भाई वोट ज्यादा आ गया कम आ गया वोट नहीं है वोट को फोट ब्रह्म स्थिर बुद्धि उसकी बुद्धि स्थिर है स्थित प्रज्ञा से सोचे थे पीछे स्थित प्रज्ञा का वर्णन आया है ऐसी बुद्धि जैसी कहते हैं देखो एक मन की स्थिरता होती है एक बुद्धि की स्थिरता होती है मन की स्थिरता से ध्यान लगता है भजन करते हैं कि मन की स्थिरता होनी चाहिए ठीक है मन की स्थिरता भी अच्छी है पर मन की स्थिरता दामी नहीं बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए बुद्धि की स्थिति कर रहे पति प्रधान है पति के पास वो मन एकाग्र नहीं करता है मन में बुद्धि में बस उत्तम के असबस बदमा है कि सुमने आन पुरुष जगनाई मेरे पुरुष है ही नहीं एक। ये बुद्धि की स्थिरता है, उस संस्थिता में से एक मन लग जाए स्थिरता है। मन की स्थिरता दामी नहीं, उस स्थितियां पैदा होती है, नरकों में जाता है स्वर्ग में जाता है, सिद्धि स्थायी शुरू कर देता है। पर बुद्धि की स्थिरता होने से मुक्ति हो जाती है। सिर्फ जैसे मोड़ो सर्वबुद्धि रसम मोड़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। ये कैसे हो, बुद्धि स्थिर कैसे हो कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आराम। ये बाह्य स्पर्श है, बाहर का स्पर्श, इसमें आसक्ति रही थी। उसको जो सुख मिलता है वो सुख सात्विक सुख है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, इन्होंने तो आसक्ति रहित हो गया और ब्रह्म के साथ में एक हो गया, वह मस्त रहता है। सुखम अक्षय अक्षय सुख, ये सुख सात्विक होता है, इसके बीच अक्षय सुख होता है, ब्रह्म का सुख होता है। बाह्य स्पर्श स्वस्थ, बाह्य स्पर्श न, बाह्य का ये नहीं कि बाहर से इंद्रियों को सुख भीतर ना हो, ये शरीर में नहीं, बाह्य ना हो संसार, चाहे भीतर हो से बाहर हो। और आभ्यंतर क्या, जो सबसे परिपूर्ण परमात्मा है वो अंत, वो योग अंतर सहांतर जो थी तू है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग के साथ युक्त आत्मा है। सुखम अक्षय अक्षय सुखम महान आनंद को प्राप्त है। ये बाहर के भोगों में आसक्ति है, यही तुम्हारे को डबोने वाली चीज है। सुख हो गया सब है, अनुकूल भगत अनुकूल पदार्थ मिल गया, भोग मिल गया, संग्रह मिल गया, रुपया हो गया खुशी हो गया, मान मिल गया खुशी हो गया, बढ़ाई होगी खुशी हो गया, आराम से सो गया नींद आ गई खुशी हो गया। क्या खुशी हो रहा है, इसे भी बदलते ही रहेगा, कभी सुख कभी दुख, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य हो तो फंस जाओगे भाई, तो कैसे दूर करें, यही स्पर्श जाप, यही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन जितने भोग है, संबंध से किसी इंद्र संबंध से जो सुख होते हैं, दुख होने दुखों के ही खास कारण है। जितने दुख पैदा होते हैं ये संबंध जन सुख भोगी को दुख मिलते हैं, उसको दुख मिलेगा, दुख से बच सकता नहीं। और वो आदि अंत वाले है जितने भोग आदि नमते बुधा विवेक रमन नहीं करता, तो रमन करता है बुध नहीं, विवेक ही नहीं, अविवेक ही अज्ञान ही है, उसमें रमन करता है सुखों में दुख। जैसे पशु है अनुकूलता राजी हो जाए, प्रतिकूलता दुखी हो जाए, कुत्ते के पुस्कार पहुंचे राजी हो जाए, पुस्कार एकाग्र होते, ये दशा है महाराज राग देश में। यही समझ जाप होगा, दुखी होगी अगर आदि अंत वाले जितने भोग आदि अंत होते नारायण 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 मौज हो गए।